हरीरी भृकुटी बीच दरबार अपना सजाए, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए।
शांति, सभी थोड़ा थोड़ा के आ जाए, भाई भी आ सकते हैं थोड़ा के। जो नीचे बैठ सकते हैं वो कृपया आगे आ सकते हैं। आज सुबह से हम सब तपस्या में हैं। मैं समझती हूँ सभी ने 9:30 से 10 में अपने आप को रियलाइज किया होगा ही कि मुझ आत्मा में कितने गुण भरे हुए हैं और यही मेरी ओरिजिनलिटी है, मेरा मूल स्वरूप है। इस तरह से हम रोज सुबह आधा घंटा घंटा कोई एक विषय की गहरी अनुभूति में बैठेंगे और उसी विषय को और गहराई में हम स्पष्ट करने के लिए, अनुभूति कराने के लिए हमारी आत्माभिमानी स्थिति क्या है और उसको कैसे लंबा समय तक हम बनाए रखें, इसको स्पष्ट हमारे आदरणीय शीलू बहन जी करेंगे। शीलू बहन को हम सब पहचानते हैं, यज्ञ में सबसे पहले पहले अगर टीवी चैनल्स पर एपिसोड्स की शुरुआत हुई है तो आदरणीय शीलू बहन जी से हुई है और आज वो डाला हुआ बीज बहुत बड़ा वटवृक्ष बन करके मीडिया से हजारों आत्माओं की सेवा कर रहा है। शिविर में आपकी मास्टरी है, देश विदेश में चाहे बाबा के बच्चे चाहे होवनहार बाबा के बच्चे, सभी के लिए आप एक प्रेरणा मूर्ति रही हैं। आपकी वाणी में ही ऐसा जादू है जो सबको अपना बनाकर रख देता है। मैं आपसे नम्र अनुरोध करती हूँ कि आज तपस्या के इस पहले दिन पहले पाठ को हम ऐसा मजबूत करें जो हमारा आज का फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाए। आदरणीय शीलू बहन,
ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण बच्चे आपस में जब मिलते हैं तो सबसे पहले दृष्टि के द्वारा मुलाकात होती है, आत्मा आत्मा को देखती है और उसके बाद ओम शांति कहते हैं। आत्मा को अपना स्वधर्म याद दिलाते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा ने इस सृष्टि मंच पर आकर सबसे पहले हम बच्चों को आत्मा का पाठ पढ़ाया। शुरू का भी वही पाठ है, सबसे पहला पाठ है और फिर देखा जाए तो अंत का भी वही पाठ है। नहीं, शुरू से लेकर अंत तक आत्मा का पाठ हम पढ़ रहे हैं और आत्मा का पाठ पढ़ लिया मानो सारा ब्रह्म ज्ञान आ गया। आत्मा के ज्ञान में सब ज्ञान आ जाता है, परमात्मा का भी ज्ञान आ जाता है, कर्मों का भी ज्ञान आ जाता है, पुनर्जन्म का भी ज्ञान आ जाता है, समय का भी ज्ञान आ जाता है, परमधाम का भी ज्ञान आ जाता है, आत्मा के क्या कर्तव्य हैं वो भी ज्ञान आ जाता है, आत्मा के सभी मूल्यों का भी ज्ञान आ जाता है केवल आत्मा के पाठ पढ़ने से। 7 दिन तक केवल आत्मा का ही पाठ पढ़ाया जा सकता है। नहीं, शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आत्मा का पाठ ही पढ़ाया और यही पाठ बाबा पक्का करते थे। बाबा को तो नशा चढ़ गया लेकिन वो दृष्टि आत्मा की बनी रहे उसके लिए बाबा क्या पुरुषार्थ करते थे। बाबा अपनी लौकिक युगल को देखते थे, बहू को देखते थे, तो उनको देखकर क्या अंदर में सोचते थे। यशोदा बाबा की लौकिक युगल थी, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। बाबा की लौकिक बहू राधिका थी, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। ये आत्मा का पाठ ही पक्का करते थे और दीवारों पर लिखते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि जब भी देखे याद आए यशोदा आत्मा है, ताकि बाबा की दृष्टि बदल जाए। यशोदा तो बाबा की युगल थी। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया जब ये बात सुनाई कि बाबा को मेहनत ज्यादा लगी यशोदा को आत्मा देखने में, या यशोदा को मेहनत ज्यादा लगी बाबा को आत्मा देखने में। ये प्रश्न मेरे से किसी ने पूछा, आप क्या सोचते हैं? जी, यशोदा को ज्यादा मेहनत लगी, ब्रह्मा बाबा को नहीं लगी होगी। जी जी, दोनों को ही लगी होगी ना, कि नहीं लगी होगी? खैर, नो आंसर। क्यों जी? ब्रह्मा बाबा को लगी होगी। अच्छा, कैसे? अच्छा, यशोदा तो बाबा को जैसे वो भूल ही गई कि ये मेरा युगल है, उनको उसी रूप से देखती थी, तो ब्रह्मा बाबा को ज्यादा समय लगा। अच्छा, माताएं क्या सोचती है? यशोदा को ज्यादा समय, देखो माताएं बहने कहते यशोदा को लगा और आप कहते भाइयों को, भाई कहते बाबा को लगा। खैर जी, अच्छा ब्रह्मा बाबा तो मान गए कि आत्मा है। हाँ जी, खैर आप इस पर सोच सकते हैं, क्योंकि न यशोदा ने कहा न ब्रह्मा बाबा ने कहा कि किसको मेहनत ज्यादा लगी। लेकिन ये प्रश्न मेरे से पूछा गया क्योंकि बाबा दीवारों पर लिखते थे, तो मुझे याद आया प्रसंग, जब महात्मा गांधी की पुस्तक हम पढ़ते हैं ना, महात्मा गांधी के निजी अनुभव, उसमें जब महात्मा गांधी को ये बुद्धि में आया कि मुझे अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करना है, और उसमें ये महसूस किया कि उसके लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए, ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए, तो उसने बहुत कोशिश की कि मेरी दृष्टि में पवित्रता आए, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं। लेकिन उसको बहुत मेहनत लगती थी, बहुत मेहनत लगी अपने युगल को के प्रति पवित्रता की दृष्टि रखे। आत्मा का तो ज्ञान था ही नहीं, ये थोड़ी उसको आत्मा का ज्ञान था, लेकिन ये जरूर था कि ब्रह्मचर्य की ताकत से ही हम भारत को अंग्रेजों से आजाद कर सकेंगे। इसीलिए जैसे अहिंसा का उसने नारा दिया, तो काम विकार भी हिंसा है, ये भी उसने स्वीकार किया, तो काम और क्रोध ये हिंसा है, तो सत्य और अहिंसा का उसने आधार लिया और उसके लिए पवित्रता ब्रह्मचर्य को महत्व दिया। परंतु उसको बहुत मेहनत लगी, वो दृष्टि जो आकर्षण की देह की होती है, इतने बच्चे तो पैदा किए ना, बहुत सारे, बहुत बच्चे थे महात्मा गांधी के कोई सिर्फ एक दो बच्चे थे, पांच छह तो थे, कुछ थे। तो उसको एक दिन याद आया कि मैं अपनी दृष्टि को कब बदल सकूंगा, जब मैं इसको माँ के रूप में देखूं, माँ के रूप में। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उसने बहुत प्रेरणा ली थी, उसी समय के थे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भी युगल थी और उसको स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या कहता था, माँ, शारदा माँ। वो क्या, उस समय तो बच्चा बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, आपस में माँ बाप ही समझौता कर लेते कि ये दोनों का ही शादी होगी। राजस्थान में तो वैसे ही है ना। तो उनका भी ऐसे ही हो गया था, जन्म से ही जैसे ये इनकी साथी बनेगी। अब ये तो बहुत बड़े संत बन गए, तो उनको स्वीकार तो किया क्योंकि विवाह तो किया था, परंतु उसको माँ की दृष्टि से देखा। और जब माँ की दृष्टि से देखा ना, तो बिल्कुल एक सेकेंड में उसकी दृष्टि बदल गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देर नहीं लगी ब्रह्मचर्य की पालना करने में। और कस्तूर उसकी पत्नी का नाम था, तो उसने नाम रख दिया कस्तूर बा। बा माना माँ, गुजराती में माँ को बा कहते हैं, तो कस्तूर बा। तो उसने अपनी किताब में लिखा कि मेरी दृष्टि तब बदली हुई जब मैंने इनको माँ के रूप में देखा, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये सच्चाई से उसने अपनी किताब में लिखा है। तो उसी समय मुझे ये संकल्प आया जब मैं पढ़ रही थी, बहुत सारे अच्छा लगता है इन सब और बायोग्राफीज पढ़ना। तो तब मैंने सोचा किसको मेहनत ज्यादा लगी होगी। तो मेरे विचार में तो यशोदा को मेहनत लगी होगी, मेरे विचार में, मैं बहनों के साथ हूँ। ब्रह्मा बाबा को नहीं महसूस, मतलब इतनी नहीं मेहनत लगी होगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के लिए तो जैसे ही शिव बाबा की प्रविष्टा, इस सब बच्चे 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 बच्चे, बाबा तो सबको बच्चे बच्चे कहते थे, यहाँ तक कि वो पक्षी को, जानवर को बच्चे। आपको मालूम होगा ना कि कैसे बाबा झोपड़ी में बैठते थे, रोज एक बुलबुल आती थी और रोज बाबा के हाथ से दाना लेती थी। बाबा चना खाते थे या कुछ खाते थे, तो बाबा के पास आती थी तो बाबा उनको अपने हाथ से जैसे चने देते थे, वो बुलबुल बाबा के हाथ पर बैठ के चने लेती थी। तो एक दिन वो आई नहीं, 11 बजे बाबा बैठते थे, तो एक दिन आई नहीं। तो बाबा ने कहा आज वो बच्ची नहीं आई है। अब तो दो बहनें सोचे पता नहीं कौन सी बच्ची को बाबा याद करते हैं। तो किसने कहा बाबा कौन सी बच्ची, बाबा ने कहा वो बच्ची, वो बुलबुल। तो बाबा के लिए तो सब बच्चे, बंदर भी आएगा, लो बच्चे को दो, बच्चे को दो, बच्चे को दो ना, बंदर को दो, मालूम है ना आप इतने की बंदर को दो जी। तो इसीलिए बाबा के आगे तो सब बच्चे थे। तो जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा की तो एक धक से जैसे वैराग आ गया ना, धन से भी वैराग आ गया, तो सारी दुनिया से वैराग आ गया, ये सब कुछ शिव बाबा का है। तो बाबा को देर नहीं लगी होगी, लेकिन यशोदा की दृष्टि बदले एकदम, और पति के बदले पिता देखे। आप सोचो पति के बदले उसको पिता देखे, क्योंकि बाबा तो सबको बच्चे बच्चे देख रहा है, बाबा के आगे लौकिक बच्चे भी थे, लेकिन एक सेकेंड में वो लौकिक अलौकिक बन गया। ये नहीं बाबा ने डिफ्रेंशिएट किया, अंतर किया कि ये मेरे लौकिक बच्चे हैं और ये मेरे अलौकिक बच्चे हैं, नहीं, अंतर नहीं किया। परंतु यशोदा को जरूर मेहनत लगी होगी, पर यशोदा की मेहनत कम करने के लिए बाबा दीवारों पर लिखते थे ताकि यशोदा पढ़े कि बाबा की दृष्टि आत्मिक हो गई है, आत्मिक हो गई। क्योंकि क्या है, वो बाबा के आगे घूंघट निकालती थी। आपने उनका फोटो देखा, यशोदा का फोटो देखा है, एक फोटो है जिसमें कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं और एक तरफ बाबा, एक तरफ मम्मा है, बीच में यशोदा है। और वो घूंघट नहीं, क्योंकि वहाँ तो हैदराबाद में तो नेचुरली घूंघट तो निकालते ही थे, और कोर्ट में जाते समय भी घूंघट निकाला हुआ था, पीछे से वकील खड़ा है। देखा है ये फोटो आप लोगों ने? किसने देखा है? नहीं देखा है ना, देखना। पता नहीं यहाँ हिस्ट्री हॉल में है या नहीं। जी है, तो वो घूंघट ही निकालती थी। अब जब बाबा की, शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने कहा सब शिव शक्तियां हैं, सब शिव शक्तियां शक्तियां आ गई, यहाँ तक कि बाबा ने उनको कहा शर्ट और पैंट पहनो, पैंट पहनती थी। मानो अब यशोदा ने पहना या नहीं पहना वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाबा ने सबको शक्ति रूप बना दिया। तो उसने तो ये भी तो आ गई। अब ये लजा करने वाली माताएं, लजा करने वाली, बिल्कुल ये जैसे हम, जैसे आप शेरनिया शक्तियां बन गई हो, आप लोग भी तो घूंघट करते होंगे कि नहीं, ससुर के आगे, जेठ के आगे करते होंगे, यहाँ तो बिल्कुल शिव शक्तियां हैं। तो उनकी, उनको मेहनत अधिक लगी होगी, बाकी मैंने किसी से पूछा नहीं किसकी लगी होगी, वो तो अंदर की बात है। परंतु बाबा की एक सेकंड में दृष्टि बदल गई, और दृष्टि इतनी बेहद की हो गई कि सब उनके बच्चे हैं। लौकिक में बाबा का जो बड़ा बेटा था वो बाबा के थोड़ा अगेंस्ट भी हो गया, छोटा तो छोटा था, नारायण छोटा था, लेकिन जो बड़ा बेटा था माना ब्रिज इंदिरा दादी जो बाबा की बहू थी उसका पति, वो सबसे पहला बड़ा बेटा था, तो उसको तो लगा कि सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी जो पिता की प्रॉपर्टी है। और बाबा ने तो एक धक से पांच बहनों के नाम पर विल कर दिया, बिना पूछे, बेटे से पूछा भी नहीं। तो बेटे ने विरोध तो किया, तो बाबा ने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ, ये भगवान का मुझे आदेश है, अगर तुमको चाहिए अपना कमाओ, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं तो भगवान को समर्पित हो गया हूँ। तो मानो इतनी बाबा के अंदर वो परिपक्वता थी और इतनी हिम्मत थी, क्योंकि बाबा, शिव बाबा की मदद बहुत थी। अब यशोदा तो आत्मा थी, तो इसीलिए उसको अपना पुरुषार्थ करना था, और ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा की शक्ति थी, है ना? अभी क्या समझेंगे? अब भाई लोग बताओ क्या हुआ होगा? तभी तो नंबर वन चले गए। नंबर वन कैसे गए? मम्मा नंबर वन कैसे गई? मम्मा और मम्मा की लौकिक माँ दोनों साथ में आए बाबा के पास, परंतु कैसे मम्मा नंबर वन गई? क्योंकि माँ बेटी को कहे माँ, क्योंकि सबकी माँ बन गई, मम्मा ने को बाबा ने भी कह दिया मम्मा, बाबा ने ही इनको मम्मा कहा, तो सारे परिवार ने, सारे यज्ञ में जो भाई बहने थे सब ने कहा इनको मम्मा, तो इनकी माँ क्या कहेगी? माँ कहेगी क्या बेटी? माँ भी तो मम्मा ही कहेगी। तो फिर इनका भी प्रश्न है कि माँ को मेहनत ज्यादा लगी उसको मम्मा माँ कहने में, या मम्मा को ज्यादा मेहनत लगी उनको बेटी कहने में? एक धक से मम्मा, त्याग माना त्याग। तो वहां लौकिक संबंध क्या होता है वो यज्ञ में सब भूल गए, और जो जिनको याद आता था ना, मानो वो तो कच्चे थे, इसलिए जो कच्चे थे वो तो भागंती भी हो गए, पर जो पक्के थे एकदम बाबा के अंग संग, बाबा मम्मा के अंग संग थे, वो तो देखो हमारी दादियां बन गई। इसीलिए बाबा ने, बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि यज्ञ में तो ईंटें पकी लेकिन कोई कच्ची रह गई, कोई पक्कर निकली। तो कच्ची क्यों रह गई? कारण क्या था? दुनिया तो धक से छोड़ी, दुनिया को त्याग करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। क्यों मुश्किल नहीं था? क्योंकि उस समय साक्षात्कार बहुत होते थे, जो एकदम क्रांति फैल गई साक्षात्कारों की। जो भी बाबा के पास आता था श्री कृष्ण के साक्षात्कार करते थे, स्वर्ग के साक्षात्कार करते थे, मौज करते थे। और यज्ञ के अंदर भी जो रहे तो ध्यान का पाठ बहुत ज्यादा था, ज्ञान कुछ भी नहीं था, सचमुच देखो तो ज्ञान कुछ नहीं था, जैसे अभी ज्ञान है इतना, उस समय कुछ भी नहीं था, बस साक्षात्कार। और बाबा ने जो प्यार दिया, वो प्यार के कारण दुनिया भूल गई सबको, इसीलिए 14 साल दुनिया का मुंह नहीं देखा, भट्टी में पके। और हम कई बार मनोहर दादी से पूछते थे कि दादी आपने 14 साल कैसे बिताए होंगे, 14 साल कोई कम है क्या, कैसे बिताए होंगे? कहती अरे तुमको क्या बताऊं, 14 साल तो क्या वो 14 महीने लगे, और फिर कहती 14 महीने भी ज्यादा, 14 दिन लगे यानी 14 साल 14 दिन ही लगे, यानी इतना जो खुशी की बातें होती है ना वो जैसे जल्दी बीत जाती है, और कोई दुख की बातें होती है तो वो बीतने में टाइम ही टाइम माना जैसे जाता ही नहीं है, जैसे इंतजार की घड़ियां लंबी होती है ना, भले 5 मिनट ही इंतजार किया और वो व्यक्ति 5 मिनट के बाद अरे मैं 1 घंटा तुम्हारे लिए खड़ी थी भले 5 मिनट ही लगा हो लेकिन इंतजार की घड़ियां लंबी होती है, और जब मिलन हुआ तो भले 1 घंटे तक मिले, अरे तो 5 मिनट ही तो हुए हैं तो जो खुशी का अनुभव होता है ना वो इतना समय भी हो तो भी लगता है थोड़ा, और दुख का जो समय होता है वो ज्यादा भी थोड़ा भी हो तो लगता है ज्यादा। तो 14 साल नहीं, 14 महीने 14 दिन ऐसे कहते हैं। तो कारण क्या है कि बाबा ने बच्चों को बहुत प्यार दिया, सब कुछ दिया, जो उनको कुछ भी कमी महसूस नहीं हुई, अपना सारा धन लगा दिया। अब जब 14 साल पूरे हुए और भारत में आए, अब परीक्षा आई है ना, बेगरी पाठ की परीक्षा, तो जो कच्चे थे, जो केवल प्यार में ही पले, जिन्होंने ज्ञान योग की स्टडी इतनी नहीं की, बस साक्षात्कार साक्षात्कार उसी में मस्त रहे, तो वो तो कच्चे निकले। तो उन्होंने क्या सोचा, अभी पता नहीं है यज्ञ चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं क्या चलेगा, कैसे होगा क्या होगा। तो कईयों ने बाबा को कहा बाबा हम जा रखकर नौकरी करें, धंधा करें, ये करें, फिर हम यज्ञ को मदद करेंगे, यज्ञ को मदद करेंगे, धंधा करके धन कमा करके यज्ञ को मदद करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे कोई जरूरत नहीं है, हुंडी सकारने वाला तो शिव बाबा है, वो बैठा है, वो किसी न किसी की बुद्धि को टच करके कराएगा, आप बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कच्चे थे वो तुमको तो दुनिया याद आ रही थी ना, खान पान याद आ रहा था, जीभ का चस्का याद आ रहा था, बहुत कुछ याद आने लगा जो 14 साल से भूले हुए थे, क्योंकि बाबा की मस्ती में मस्त थे, साक्षात्कारों में मस्त थे। तो जब परीक्षा आई उस समय फेल होते गए, और कई बाबा की आज्ञा के बिना भी बाबा से छुट्टी लेकर गए, बाबा ने हाँ नहीं कहा, लेकिन कहा नहीं बाबा, तो बाबा का आपकी मर्जी आपकी मर्जी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा जिम्मेवार नहीं है, बाबा क्यों जिम्मेवारी उठाएंगे। और सचमुच उन्होंने कितना पछताया, क्योंकि बाबा को पहचान नहीं सके, पर जिन्होंने पहचाना उन्होंने एक धक से स्वा कि आप मोए मर गई दुनिया, दुनिया का मुंह फिर नहीं देखना है। इतने हद तक कि 1952 में जब बाबा ने सबको, क्योंकि निमंत्रण आते गए तो बाबा कहते थे बच्चे जाओ जाओ सेवा पर जाओ सेवा पर जाओ सेवा पर जाओ, तो जो पक्के थे ना कहे बाबा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है कि रोज किसी न किसी का टर्न आता था, उनके रिश्तेदार बुलाते, बाबा कहते जाओ सेवा करो, आपने जो बाबा से पालना ली अभी जाके सेवा करो, तो कहते हम नहीं जाएंगे। तो बाबा एक एक का वरना टर्न आता था तो सब डरती थी कहीं बाबा हमको न भेजे, हमको बाबा न भेजे। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है, बड़े मजे आते जब दादियों के साथ बैठते थे ना, तो ये बातें जो कभी न सुनाने वाली बातें वो सुनाती थी दादियां। तो एक दिन दादी जानकी का टर्न आना था, उसको मालूम था भी बाबा मेरे को भेजेंगे क्योंकि बाबा ने बात की होगी, तो वो जाकर के पीछे जाके बैठ गई ताकि बाबा मुझे देखे ही नहीं पीछे की। तो बाबा ने कहा ढूंढते रहे बाबा जनक बच्ची कहाँ है, जनक बच्ची कहाँ है, तो जनक तो दिखाई नहीं दी। तो बाबा ने कहा वो बाबा ने देखा वो एकदम लास्ट में बैठी है। बाबा ने कहा लो बकरी बैठी है, बकरी बकरी बकरी। ऐसे किसको कहो तो भाई बुरा लगे, लेकिन बाबा तो शेरनी शक्ति बनाने वाले थे। बाबा ने कहा देखो बकरी बैठी है, डर रही है, डर रही है, तुम शेरनी शक्ति कब बनोगी? बस उसी समय दादी को ताकत आ गई, शक्ति आ गई और एकदम से आ गया, हाँ बाबा आप जैसे कहेंगे हाँ बाबा, तो आ गई शक्ति। तो ये नहीं कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा, लेकिन उसको शक्ति आ गई इसी से कि मैं तो शेरनी शक्ति हूं। तो बाबा सबको भेजते गए, सेवा पर भेजते गए भेजते गए। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने सबको बुलाया, है ना। देखो ये भी कैसा ड्रामा था, बाबा को सेवा पर भेजना था, सेवा बढ़नी थी भारत में, और जैसे बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा ने सब दादियों को यज्ञ मधुबन में बुलाया। साकार में बाबा मधुबन में बहनों को नहीं रखते थे, बाबा कहते थे सेंटर है बहनों की शोभा, बहने सेंटर पर आए रहे, भाई पांडव भवन, इसलिए बाबा ने नाम ही रखा पांडव भवन, शक्ति भवन नहीं रखा, क्योंकि जो कारोबार में होते थे ना उनके लिए ही था, भाई कोई गार्डनर है, कोई भाई माली है, बर्तन साफ करते सफाई करते सब अपने ही भाई करते थे, यज्ञ में तो सब बहने करती थी। तो बाद में तो भाई आए, भाई आते गए और बाबा ने बहनों को सबको भेजता भेजा। तो बाबा कहते थे बहनों को मधुबन में नहीं रखना है, बहने तो सेंटर की शोभा है, तो यहाँ कौन रहेंगे जो पच्छड़ माल है, पच्छड़ माल कोई बाबा मधुबन में रखेंगे, क्योंकि जैसे कोई सब्जी बेचने जाता है ना तो सब्जी सारा दिन बिक गई ताजी ताजी ताजी, अब रात शाम को कौन सी सब्जी बचती है, हा? सड़ी हुई सब्जी, सड़ी हुई सड़ा हुआ फल, जो सड़ा हुआ माल है जो कोई नहीं खरीदेगा वो बच जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, तो कोई काम का नहीं है। तो बाबा के पास जो बुजुर्ग बुजुर्ग बहने थी, एक बहरी थी एक अंधी थी, मतलब नहीं दिखाई देता था, तो वही थी। तो जब सेवा बढ़ने लगी तो बाबा ने बाबा को पत्र लिखा एक बहन ने, बाबा हमको हैंड्स की जरूरत है। तो बाबा ने कहा ये दोनों है मैं भेजूं। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने सब दादियों को बुला लिया, क्योंकि यहाँ बठिया होनी थी, तो बाबा ने कैसे उनको तैयार किया और फिर यहाँ यज्ञ की शोभा बनाई। क्योंकि नहीं तो कई सोचने लगे बाबा अव्यक्त हो तो मधुबन कौन आएगा, मधुबन तो माना बाबा, बस मधुबन माना बाबा, लेकिन बाबा चले गए तो मधुबन में कौन आएगा। तो बाबा ने कहा आएंगे, और जैसे मधुबन में आते थे वैसे ही आते रहेंगे, और यहाँ बठिया चलेगी, ट्रेनिंग चलेगी, जो पहले किसी की बुद्धि भी नहीं था कि ट्रेनिंग भी होती है, कन्याओं की, कुमारियों की, माताओं की, युगलों की बठिया होती गई 69 के बाद, और दादियों में वो शक्ति आ गई। कई अव्यक्त मुरलियां आप लोगों ने सुनी होगी जो बाबा ने दादियों को बाबा के कमरे में सुनाई है। बाबा की मुरली एक तो हिस्ट्री हॉल था, ये तो 74 में बना है, 74 में ये हॉल बना है, 69 से तो बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, 4 साल तो वहीं आए। तो जो पार्टी आती थी बाबा उनसे मिलते थे, लेकिन जो खास दादियां थी ना उनसे बाबा के कमरे में मिलते थे। और बाबा के कमरे में बाबा ने जो वो मुरलियां चलाई दादियों के प्रति, वो जैसे उनको एम्पावर किया, उनको सशक्त किया कि आप अभी दुनिया के नजरों के सामने हो, दुनिया के आगे आप हो, शिव बाप और ब्रह्मा बाप तो गुप्त है, आप शिव शक्तियां आगे हो। और कैसे उनके अंदर शक्ति भरी, बल भरा, नहीं तो जब तक बाबा मामा थे दादियां तो अपने आप को बहुत हल्का समझते थे, बाबा बैठे, लेकिन बाबा अव्यक्त होने के बाद तब ये शक्तियां बनी, दादियां बनी, दीदियां बनी जो यज्ञ की थी। परंतु किस आधार पर हुआ, जब दृष्टि बदल गई। तो जब हम कहते आत्म अभिमानी स्थिति, ये आत्म अभिमानी स्थिति केवल कहने तक नहीं है, पर सचमुच प्रैक्टिकल में बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि जब बाबा कहते हैं ना आत्मा देख रही है, आत्मा सुन रही है, आत्मा बोल रही है, तो एक आत्मा थी वो जब भी बाबा को पत्र लिखती थी तो क्या लिखती थी, विनोद भाई उसका नाम, विनोद की आत्मा आपसे मिल रही है, विनोद की आत्मा ने देखा, विनोद की आत्मा ने लिखा, मतलब ऐसे आत्मा आत्मा आत्मा। तो बाबा एक दिन वो पत्र क्लास में लेकर के आए कि देखो इस बच्चे को आत्मा का पाठ कितना पक्का है। हम लोग तो भूल जाते हैं ना, अपने शरीर का भान इतना होता है, याद नाम शरीर का इतना याद होता है, जो हम रहता है ध्यान कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी इस नाम की नाम से शरीर और मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं है, नाम भले शालिग्राम कहते हैं लेकिन नाम तो शरीर का है, पर वो शरीर का नाम कितना पक्का है। नींद होगी ना गहरी नींद और अगर कोई नाम भूलेगा एकदम आठ कौन मुझे बुला रहा है, तो कितना पक्का होगा ये नाम। इसका मतलब ये नहीं कि नाम को भूल जाओ और आपको कोई बुलाए और आप ध्यान ही नहीं दो, मुझे तो याद ही नहीं है, इसका भाव ये नहीं है, लेकिन मतलब है कहने का कि किस प्रकार हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहें। तो आत्म अभिमानी स्थिति किसको कहेंगे, जब ये देह का अभिमान बिल्कुल भुला हुआ हो। देह का अभिमान दो प्रकार से आता है, एक देह का अभिमान तो आता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, जो दुनिया में लोगों को अपना कुछ मान मर्तबा है उसका अभिमान, नाम का अभिमान, अपनी पोजीशन का अभिमान, धन का अभिमान, या कोई भी प्रकार का अभिमान, किसी को सुंदरता का अभिमान अभिमान होता है। इसीलिए अगर थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, माना जो अपने आप को बहुत सुंदर समझती है मान लो, और किसने का क्या सुंदर है ये, कितना उसको बुरा लगेगा, अभिमान है ना, तो मैं तो हूं ही सुंदर और ये तो इसने मेरा अपमान कर दिया। कोई बहुत धनवान है और उसको थोड़ा सा किसी ने कह दिया अरे इनसे धनवान तो बहुत है, तो उसको क्या होगा, है अपमान लगेगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन कोई अगर कह दे कि इतना क्या अभिमान नशा रखा अभी बिजनेस का, इससे बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, तो उसको ठेस तो पहुंचेगी, उसको लगेगा कि ये मेरा मेरी ग्लानी की। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिसको अभिमान है उसको अपमान बहुत जल्दी लगता है। तो ये है प्राप्तियों का अभिमान, इस संसार की उपलब्धियों का अभिमान। तो वो तो बाबा ने हमारे एक सेकंड में छुड़ा दिया ना, अभी है क्या किसी को अभिमान, मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं फलाना हूँ, यहाँ तक भी कईयों को होता है मैं चार बेटों का बाप हूँ या पांच बेटों का बाप हूँ, पांच बेटियों का बाप हूँ, ये अभिमान नहीं होता है बेटों का बाप हूँ तो बेटों का भी अभिमान होता है, मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मेरा एक बेटा इंजीनियर है, मेरा एक बेटा, मेरा एक बेटा, अभिमान है ना ये भी कि नहीं है, है कि नहीं। तो ये भी होता है, बाबा कहते हैं मेरा क्या है, ये तो सब कर्मों का हिसाब किताब है, तो बेटा बना या बेटी बना कर्मों का हिसाब किताब है, और जब हिसाब किताब पूरा होगा तो कोई किसी का नहीं है, ना बाप रहा ना बेटा रहा, सब पूरा हुआ। तो एक और है ये उपलब्धियों का घमंड जो अभिमान का रूप है, और बाबा कहते हैं एक धक से मारो आप मोए मर गई दुनिया। लेकिन दूसरी ओर है हीनता, ये भी अभिमान का रूप है। कैसा कैसी आती है हीनता, मैं तो कोई काम की नहीं हूँ, मैं तो मेरे अंदर ये कोई कला नहीं है, मेरे अंदर कोई विशेषता ही नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है, इसको क्या कहेंगे, ये तो देखो कितनी होशियार है, कितना अच्छा भाषण कर लेती, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, ये कितना अच्छा खाना बना लेती है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, तो ये इसको क्या कहेंगे, ये भी दे अभिमान है। किसको कुछ काम दो कहेंगे मैं तो नहीं कर सकूंगी, इसको क्या कहेंगे। अगर काम मुझे मिला है इसका मतलब मैं कर सकती हूँ, अगर मैं कर्ज नहीं सकती होती तो मुझे मिलता ही नहीं। वो समझ नहीं सकता कि मैं इसको काम दे रही हूँ और ये कर नहीं सकेगी तो मैं इसको दूं ही क्यों। अगर मिल रहा है माना मैं कर सकती हूँ, तो अगर मैं कहती हूँ मैं नहीं कर सकती, इसका मतलब ये भी अभिमान है, ये हीनता है, ये अभिमान का एक नेगेटिव रूप है। तो बाबा हमको क्या कहते हैं, ये दोनों प्रकार का अभिमान मिटाओ, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये हीनता हमारे नस नस में भरी हुई है। भक्ति में हमने बहुत हीनता दिखाई, दोनों ही दिखाया, भगवान के आगे हीनता दिखाई। कैसे, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, है ना। आरती में क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी, क्या कहते हैं अपने लिए। अब ये मैं मूर्ख खल कामी पापी ये दुनिया के आगे बोलेंगे क्या, तो केवल भगवान के आगे ही बोलेंगे, क्योंकि समझ से बड़ी नम्रता दिखा रहे हैं। और बाबा क्या कहते हैं, ये नम्रता नहीं है, ये क्या है, अज्ञानता है, ये मूर्खता है। क्योंकि भगवान के हम बच्चे हैं, और भगवान के बच्चे कहीं मैं नीच पापी दास कपटी गंदा बंदा मूर्ख निर्बल, तो ये तो जैसे पिता का नाम बदनाम कर दिया। पिता बड़ा आदमी और बेटा नालायक हो, तो पिता का ही सिर नीचे हो जाएगा, क्योंकि कैसा बेटा है। और अगर बेटा बहुत कमाई करता है तो बाप को भी नशा चढ़ता है, खाली बेटे को थोड़ी चढ़ता है। तो बाबा हमको कहते हैं दोनों प्रकार का अभिमान गलत, दोनों दे अभिमान है। क्योंकि तो आत्मा का अभिमान क्या है, आत्म अभिमानी स्थिति क्या है, इसको कहेंगे स्वमान। जो आत्मा के मूल गुण हैं, उन गुणों को हम इतना मान देते हैं, वही मेरा स्वरूप है, इसलिए कहा शिव शक्ति है, इसलिए कहा पांडव है। शिव शक्तियां पांडवों ने कभी अपने गुणों को भूला नहीं, पांडवों ने भूला क्या अपने गुणों को। हाँ, अर्जुन ने थोड़ा सा दिखाया मोह के वश होकर के, चलो ये थोड़े दिखाई ये कमजोरियां पांडवों की, लेकिन पांडव तो बड़े शूरवीर दिखाए। तो हम वो शिव शक्ति पांडव हैं, ये स्वमान आत्मा को रहे, ये भी आत्म अभिमानी स्थिति है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति में तीन प्रकार की स्टेजेस है। एक साकारी स्थिति में आत्म अभिमानी स्थिति, हम ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, ये कभी ना हम भूलें। ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, हम चोटी हैं, तो चोटी माना उनकी नजर कभी नीचे नहीं जाएगी। स्वमान, लौकिक में ब्राह्मणों को कितना नशा होता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ बोलते भी हैं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर बाबा कहते हैं वो तो नाम के ब्राह्मण हैं, चलो जाति के हैं, कर्म के तो है ही नहीं। है कर्म के हैं, क्यों कर्म के नहीं है, क्योंकि है तो फिर भी कुक संतान ना, मुख संतान थोड़ी है, और विकारी तो है ही है। भारत के बाहर जो भी लौकिक में ब्राह्मण गए ना, इंडियन लोग बहुत विदेशों में गए हैं, लेकिन वहां तो उनका धर्म कर्म सब भ्रष्ट। कितने ब्राह्मण देखो, क्या कहेंगे, मीट खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर देखो मंत्र पढ़ते हैं। हम ट्रिनिडैड में गए, वहां पर इतने मंत्र पढ़ते, इतना गीता कंठस्थ, इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, ब्राह्मण है, लौकिक में ब्राह्मण कहलाते, पर सब कुछ खाते हैं, मीट खाते, अंडा, सब कुछ। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि ब्राह्मण को वो मछली भी खिलाते हैं बंगाल में, क्योंकि वो जिसने शरीर छोड़ा उसका वो ब्राह्मण को बुला करके, जैसे उसमें चलो वो आत्मा को याद करके ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो जो उसको श्राद्ध करते हैं, तो जो पसंद था ना उसको, वो ब्राह्मण को खिलाएंगे ताकि वो उस तक पहुंचे। अब उसको मछली पसंद थी तो मछली खिलाएंगे, ये सब करेंगे, तो उसको जो पसंद था तो वो सब खाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं खाते हैं। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, तो जल फल है, मछली क्या है, जल का ही तो फल है ना, जल से निकलता है, तो क्या है ये, वो धरती से निकलता है, ये जल से निकलता है। तो ये जल फल है मछली, इसमें क्या है? अंडा क्या है? ये तो व्हाइट पटेटो है, व्हाइट सफेद पटेटो है ना, तो ये थोड़ी कोई बुरी चीज है। तो इसीलिए वो उसको नहीं मानते। क्यों नहीं? क्योंकि जानते ही नहीं कि ब्राह्मण किसको कहेंगे। तो ब्राह्मणों का नशा क्या है? जिनको ब्रह्म ज्ञान हो, ब्राह्मण किसको कहेंगे? जिनको ब्रह्म ज्ञान हो, जो ब्रह्मा भोजन खाए, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ठीक है ना, और ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान मान आत्मा का ज्ञान, और तू चौथा जो ब्रह्मचर्य, ब्रह्माचार्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? जो ब्रह्माचार्य हो, ब्रह्मा का आचरण पालन करने वाले हो, उसी का नाम रखा ब्रह्मचर्य। जिसको बाबा ने बहुत गहराई से एक बार समझाया था कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं बस काम विकार को हमने कर्म से जीता, लेकिन स्वप्न तक भी जीते, स्वप्न तक भी। क्यों स्वप्न तक? स्वप्न शब्द क्यों बाबा कहते हैं? संकल्प इनफ नहीं है, स्वप्न क्यों कहते हैं? संकल्प बहुत है, संकल्प में भी नहीं आए, लेकिन स्वप्न तक भी क्यों? क्योंकि स्वप्न हमारे वश में नहीं होता है। जब जागृत अवस्था में है तो संकल्प भी हमारे वश में है, वाणी भी हमारे वश में है, कर्म भी हमारे वश में है, पर जब नींद में होते हैं तो उस समय तो जैसे आत्मा भी सुषुप्त अवस्था में जाती है, तो उस समय अगर वो संस्कार इमर्ज होते हैं, मानो कि ये भी ब्रह्मचर्य नहीं है, तो स्वप्न में अभी न हो, स्वप्न दोष आता, ये भी विकार है। इसीलिए बाबा इतने हद तक हमें पवित्रता की बात करते हैं, लेकिन वो तब होगी जब कर्म के अंदर हमारा आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव होगा। कर्म तक भी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भावना होगी। सबको आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो। इसलिए आत्मा देखने के लिए बाबा कई बार कहते हैं बस इसके नीचे मत जाओ, सबको भ्रकुटी में ही देखो, भ्रकुटी में आत्मा चमक रही है। अगर इसके नीचे गए ना, मस्तक से नीचे, तो फिर देह अभिमान आ जाएगा, फिर अंतर महसूस करेंगे। भले कोई बुरी नजर नहीं जाएगी या बुरे विचार नहीं आएंगे, लेकिन इसकी जो आंखें ना, ये बड़ी सुंदर है। इसका जो नाक है ना, इतना मोटा मोटा है, देखो ना कैसा है, पकोड़े जैसा नाक है। तो अगर वो भी हम कहते हैं, माना क्या देख रहे हैं हम, शरीर को देख रहे हैं, इसके होंठ ना कितने पतले पतले हैं। तो चलो फिर भी ये सतो है, चलो इतना बुरा नहीं। और नीचे आओ तो रजो, और नीचे आओ तो बिल्कुल तमो, तमो तमो प्रधान। तो ये भी स्टेजेस है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कहाँ देखो? मस्तक में देखो। भक्ति मार्ग में क्या करते? कहते चरणों में देखो। उसी को वो नम्रता समझते हैं। दिखाते हैं ना कि राम लक्ष्मण हनुमान जब निकले सीता को ढूंढने के लिए, तो सीता ने तो अपने सारे आभूषण वो गिराती गई गिराती गई, तो हनुमान ने या राम ने वो एक नेकलेस देखा, कहा लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ये तो नहीं कि सीता का नेकलेस है? तो उसने कहा माफ करना, मैं तो कभी उनके गले में भी नहीं देखा, मैं सदा उनके चरणों को ही देखता था। यानी एक अच्छी भावना के हिसाब से है, पर बाबा तो हमको उनसे भी ऊंचा उठाते, चरणों में क्यों पड़े हो? आधा कल्प से तो चरणों में ही पड़े, नहीं क्या किया? टिप्तर भी घिसाई, बाबा कहते हैं सब खाली हो गए। आज भी बाबा ने कहा आधा कल्प से कितने भटके, कितने पैर थकाए होंगे, कितनी तीरथ किए होंगे, कितनी यात्राएं की होगी, और अभी बाबा क्या करते हैं, पैर दबाते हैं। माताएं थक गई हो, थक गई हो, बहुत थक गई हो माताएं, क्या कहेंगे माताएं, हाथ उठाओ, थक गई हो कि नहीं थके? अभी थोड़ी कहेंगे थके, पर जब बाबा का ज्ञान नहीं था तो थकी हुई थी ना, बिल्कुल। तो देखो बाबा ने आकर के माताओं के पैर दबाए। तो इसीलिए बाबा हमको तीन स्टेजेस बताते आत्म अभिमानी स्टेज की। एक साकारी स्थिति में आत्म अभिमानी, ब्राह्मण हूँ, पांडव हूँ, शक्ति हूँ, तो ये साकारी स्थिति, ये भी एक स्वमान है, नशा है, ये स्वमान है आत्म अभिमानी स्थिति का। फिर दूसरा है फरिश्ता की स्थिति, ये अव्यक्त अवस्था के रूप में फरिश्ता का भी नशा, मैं होवनहार देवता हूँ, ये भी साकारी नशा है, क्यों नहीं, ब्राह्मण हूँ, शिव शक्ति हूँ, पांडव हूँ, होवनहार देवता हूँ, ये साकारी आत्म अभिमानी स्थिति है। और फिर अव्यक्त स्थिति में आत्म अभिमानी स्थिति कैसे है, फरिश्ता स्थिति। इस संगम युग पर मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता बनना है माना फर्श से रिश्ता नहीं, तो आकारी देव शरीरधारी सूक्ष्म देहधारी, तीन बाबा कहते हैं स्वरूप में चलते फिरते अनुभव करो, मैं तो आकारी फरिश्ता हूँ, आकारी फरिश्ता हूँ। साकारी स्थिति में कर्म योगी हूँ, तो साकारी स्थिति में कर्म योगी समझेंगे तो हाथों से कर्म है, मन से बाबा की याद है, तो ब्राह्मण का नशा भी है, साथ साथ शक्ति पांडव भी हूँ, देवता बनने वाला हूँ, और कर्म योगी हूँ, राज ऋषि हूँ, ये बहुत सारे नशे हैं, साकारी नशे, ये आत्म अभिमानी स्थिति के ही नशे हैं। और अव्यक्त स्थिति का वो है फरिश्ता हूँ। फरिश्तों की जहाँ बात आती है, मैंने विदेशों में बहुत देखा, पश्चिमी दुनिया में आप जाइए, जहाँ फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यहाँ तक कि बहुत सारे देश जो यूरोप के देश है, वहाँ पर फरिश्ते बहुत दिखाते हैं, हर बिल्डिंग के ऊपर फरिश्ता होगा, हर बिल्डिंग, और उनको पंख दिखाए हैं, हर बिल्डिंग की छत पर या बिल्डिंग पर फरिश्ते, रास्तों पर भी फरिश्ते के बड़े बड़े वो होर्डिंग्स है, रास्ते पर कहाँ कहाँ बगीचों में बड़े बड़े एंजल्स की मूर्तियां हैं, बहुत सुंदर। अब वो किसकी यादगार है, उन बिचारों को तो पता ही नहीं है, वो हम बच्चों की यादगार है, जो बाबा कहते हैं अंत के समय वो आपको उस फरिश्ते रूप में देखेंगे। तो मैं तो कई बार कहती हूँ, पूर्वी दुनिया भी हमने देखी है, पश्चिमी दुनिया भी देखी है, तो पूर्वी दुनिया में देवी देवताएं बहुत है, बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म में भी देवियों को देवताओं को बहुत मानते हैं, तो वहां पर देवी देवताएं बहुत है चारों तरफ, और पश्चिमी दुनिया में फरिश्ते हैं। तो हम तो यही सोचते हैं कि जब अंत का समय आएगा तो जो पूर्वी दुनिया में लोग हैं वो देवी देवता के रूप में हमारा साक्षात्कार करेंगे, और जो पश्चिमी दुनिया के लोग हैं वो हमको फरिश्तों के रूप में साक्षात्कार करेंगे। फरिश्ता आया, उनमें भी कई फरिश्ते हैं, कई प्रकार के फरिश्ते हैं। इटली में हम गए थे तो वहाँ जो पोप जहाँ रहता है इटली में, रोम में, उसका बहुत बड़ी चर्च है उसकी, तो वो जो चर्च है उस चर्च में जैसे ये अपना शिव बाबा है ना, वैसा ही है, अंगुष्ठाकार लाइट, और उसके चारों ओर किरणें हैं, खास हम देखने के लिए गए थे, और चारों ओर जो किरणें, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल, इतना बड़ा पूरी छत तक है वो, और एक एक किरण में एक एक फरिश्ता उस किरण को पकड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे भी फरिश्ते, और वो पंख के साथ, और एक एक किरण को पकड़ा हुआ है, तो वो उसमें आठ आर्च एंजल्स बताते, आठ, तो वो बाबा कहते ना तुम अष्ट रतन, वो अष्ट रतनों की निशानी है, तो सचमुच। और फिर हमने कहा, हमने वहां पूछा कि ये इसको आप क्या कहते हो, तो कहा कि ये भगवान के स्पेशल दूत है, स्पेशल मैसेंजर्स ऑफ गॉड, वो एंजल्स जो आठ, जो बिल्कुल वो लाइट के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है। और आप छत में देखो तो एंजल्स ही एंजल्स, एंजल्स ही एंजल्स, चारों तरफ एंजल्स ही एंजल्स, दीवारों में भी, शीशों में भी एंजल्स ही एंजल्स, फरिश्ते, लेकिन उनको नहीं मालूम कि इसका अर्थ क्या है। एंजल्स का ना माँ बाप दिखाते हैं, एंजल्स का न जन्म दिखाते हैं, न उनकी मृत्यु दिखाते हैं, न उनका कोई पति या पत्नी दिखाते, कुछ नहीं दिखाते, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस उनके कर्तव्यों के आधार पर वो एंजल्स के अलग अलग नाम है, एक है गार्डियन एंजल, वो बच्चों की एंजल है, बच्चों की रक्षा करने वाली। तो वहाँ फोटो दिखाते छोटे छोटे बच्चे और उसके ऊपर एंजल खड़ी है। अब फिर हम पूछते ये मेल है या फीमेल है, ये भी उनको पता नहीं है मेल है या फीमेल है, क्योंकि पता ही नहीं है। बस एक एक वो चोबा वो पहन लेते हैं तो वो स्त्री की ड्रेस है या पुरुष की ड्रेस है वही पता नहीं। तो स्त्री है या पुरुष है एंजिल वो भी नहीं बता सकते हैं। तो क्योंकि आत्मा है ना, फरिश्ता स्थिति है, कोई देवभान थोड़ी है, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं। तो इसलिए एंजिल्स, तो वो हमारा आत्म अभिमानी स्थिति का स्वरूप है, बिल्कुल हल्के देह से न्यारे अव्यक्त फरिश्ते की काया में। जब चाहे उड़ते रहो, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। और फिर निराकारी अवस्था कौन सी है, आत्म अभिमानी स्थिति की, जिसको बाबा कहते अशरीरी अवस्था, अशरीरी स्थिति। एक सेकंड में देह से न्यारे बन जाओ, मैं आत्मा मैं बिंदु, तो बिंदु रूप की स्थिति ये आत्म अभिमानी स्थिति है, बिल्कुल अशरीरी स्थिति ये निराकारी स्थिति है। तो कर्म में जब आते हैं तो भी ये स्थिति बना सकते हैं, मैं आत्मा करण करावन हार, जो बाबा कहते हैं करा रहा हूं देह की इंद्रियों के द्वारा, और मैं आत्मा करण हार बाबा मुझसे करा रहे हैं। ये करण करावन हार का डबल अर्थ हम साकारी स्थिति में अनुभव कर सकते हैं, तो ये भी आत्म अभिमानी स्थिति है। तो हर बार आप अलग अलग रूप से ये आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। दुनिया में कहते हैं ना, कोई उनको मंत्र मिलता है, कोई जाप करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं। क्यों बोर हो जाते हैं, क्योंकि वही 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 रिपीट है। और यहाँ रोज की नई मुरली, रोज के नए विचार, रोज का नया स्वमान, रोज की ऊंची स्थिति अलग अलग रूप से हम बना सकते हैं और उसी में हम खो सकते हैं। तो कितना सुंदर बाबा ने योग का अनुभव कराया। तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए इसका अभ्यास करेंगे। हाँ ठीक है, तो एक सेकेंड में आत्मा इस देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से, देहधारियों से, पांच तत्वों की प्रकृति से उपराम हो जाए। मैं देह में होते हुए भी देह में नहीं हूं। ये शरीर तो मेरा एक साधन है, जिसके द्वारा मैं आत्मा कर्म कर रही हूं। मैं एक सेकंड में कर्म से न्यारी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, देह के अंदर देही आत्मा विराजमान है। अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति हूं, शांत स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रकाश का पुंज हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, अति निरसंकल्प हूँ, मैं आत्मा अपने स्वमान में स्थित हूँ, शिव बाबा के नैनों का नूर हूँ, उनका दिल तख्त नशीन हूँ, भगवान के दिल में विराजमान, कितना ऊंचा भाग्य है मेरा, भगवान ने मुझे अपना बना लिया, मैं आत्मा इस संगम युग पर ब्रह्मा की मुख वंशावली हूँ, ब्रह्मा से डायरेक्ट अलौकिक जन्म लिया है, एक नया जीवन पाया है, ये तन ये मन ये धन सब कुछ बाबा तेरा, मैं भी तेरा, साक्षी दृष्टा होकर इस विश्व नाटक को देख रहे हैं, कैसा सुंदर तंपाट बजाया, विश्व महाराजन के रूप में पूज्य स्वरूप के रूप में सच्चे ब्राह्मण के रूप में भगवान के राइट हैंड के रूप में नई सृष्टि के निर्माण के कार्य के रूप में मैं मददगार हूँ, कितना ऊंचा मेरा पाठ है, फरिश्ता बनकर सारे विश्व को मुझे सकाश देनी है, आत्मिक स्थिति का अनुभव कर अपने सर्व गुणों को अपने अंदर अनुभव करना है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में विद्यमान है। मैं सर्व आत्माओं को शांति के वाइब्रेशंस दे रहा हूं। दुखी अशांत प्यासी आत्माएं, तड़पती आत्माएं, एक बूंद की प्यासी है। बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया है, अब मुझे सबको बांटना है। मैं एंजल बनकर सारे विश्व में उड़ता रहूं। और सबको शांति का दान देता रहूं, यही मेरा लक्ष्य है। निराकार आकार और साकार तीनों ही स्वरूपों में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। शिव बाबा के सानिध्य में हूं, उनकी छत्र छाया में हूं। निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ। अत्यंत हल्की हूँ। देह और देह की दुनिया से एकदम उपराम, अगर मन कहीं और जा रहा हो तो फिर से याद दिलाओ मैं कौन हूं। शिव बाप और ब्रह्मा बाप की लाडली संतान, इस संसार में केवल एक मेहमान। मैं आत्मा तो मूल वतन की वासी हूं, एक सेकंड में मन और बुद्धि उस शांति धाम में पहुंच जाए। एक बेहद प्रकाश की दुनिया, जहां मैं आत्मा अशरीरी स्थिति में हूं, शिव बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। शिव बाबा प्रेम का सागर है, मुझ पर प्रेम बरसा रहे हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के प्यार में खो गई हूँ। वो सत्यम शिवम सुंदरम की याद में ये कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। मैं आत्म अभिमानी बन अपने स्वमान की स्थिति में स्थित हो।
आदरणीय शिलू बहन जी का बहुत बहुत थैंक्स। आज हम इस विषय पर कुछ आत्मनिरीक्षण करेंगे और ये प्रैक्टिस को पक्का करेंगे। वैसे ही आधे घंटे का सेशन है, लेकिन आप लोग 2-5 मिनट उठना चाहेंगे या एक्सरसाइज कोई करे ऐसा पसंद करेंगे तो आप उठ जाए। हम लोग एक छोटी